एक्सपेक्टेशंस थे मच बिलो एक्सपेक्टेशंस. आउट ऑफ 130 ओनली 40 वर प्रेजेंट. 41 मंगल आरती के लिए, वन लेट. और ये क्या है? आउटस्टेशन केवल 3. तो आज का क्या अटेंडेंस? कृपा करके आपके सेल फोन साइलेंट कर दीजिए. तो मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आपको यदि याद हो, जब हमने जागृति के लिए आपके मेंबरशिप मांगी थी, क्या है 51 आउट ऑफ 136, 51 है आज का अटेंडेंस. तो हालांकि जो एब्सेंट है, पता नहीं उनको कब तक कन्वे होगा ये मैसेज कि हमने जब आप लोगों से मेंबरशिप के लिए कमिटमेंट मांगा था, तो सबको याद है कुछ कंडीशंस रखे थे. कौन बोलेगा? बोलिए. कंपलसरी संडे नहीं, वंस अ वीक संडे, आइडियली संडे, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम वंस अ वीक कंपलसरी है. और कमिटमेंट बिगिनिंग विथ अटेंडेंस एटलीस्ट फॉर दीज प्रोग्राम्स. फॉरगेट अबाउट कमिटमेंट फॉर द मिशन. ये दो महत्वपूर्ण. तो देखिए, यहां पर हमारा इनिशियल जो प्रपोजल प्रस्ताव ये था कि चाहे हमको केवल 4 या 8 या 10, केवल इतने भी मिले तो भी काफी हैं, लेकिन वो कमिटेड होने चाहिए. वी आर नॉट आफ्टर नंबर्स, वी आर आफ्टर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. तो अब सबसे पहले यदि हम मंगल आरती अटेंडेंस का डिस्कशन फिर से निकालें, जैसे लास्ट टाइम हमने निकाला था, तो क्या अड़चने आ रही हैं? इतना फिगर कम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कुछ बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अनअवॉइडेबल है, तो फिर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. कई भक्त मैंने देखा जो एक्चुअली, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि कोई ऐसे कैंडिडेट्स आए जो कहें, प्रभु जी हफ्ते में एक बार क्यों? खैर वो तो बहुत बड़ा बेंचमार्क है, तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये प्रश्न पूछा जाए कि हफ्ते में एक ही बार क्यों, व्हाई नॉट ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, लाइक दैट. तो क्योंकि हमने ये फोरम, जैसे मैंने अनाउंस किया था कि एक मिशनरी ग्रुप मुझे तैयार करना है, और मिशनरी ग्रुप तैयार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन. और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कोई कंपल्शन नहीं है. यदि जो कंडीशंस हैं, डिसिप्लिन हैं, वो आपसे नहीं फॉलो हो रहे हैं, यू कैन स्टिल बैक आउट. तो दो तरीके होंगे, या तो फिर हमें कहना होगा आप लोगों को, क्योंकि क्या होगा कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को लेजी बना सकती है. तो ये जो फिगर्स हैं, होता क्या है, मैं आपको बताऊं, मॉब साइकोलॉजी है. सेल फोन्स साइलेंट वंस अगेन. मॉब साइकोलॉजी ये है कि जब 125 या 130 कैंडिडेट्स हैं इसमें, और उसमें से अगर केवल 40 अटेंड कर रहे हैं, तो जो 40 अटेंड कर रहे हैं उनको धीरे धीरे डाउट आने लगता है कि क्या हमको भी अटेंड करना जरूरी है क्या, तो धीरे धीरे उनका नंबर कम होते जा रहा है। लेकिन अगर केवल 10 ही हैं और 10 के 10 अटेंड कर रहे हैं, ये अपने इसमें खेल रहे हैं क्या लॉन में, और 10 के 10 अगर बहुत कमिटेड हैं, कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, तो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहता है। इसलिए हम एक खाद और जागृति में एक अभी एवरेज निकालेंगे कि यहाँ का अटेंडेंस और साधना का अटेंडेंस, उसका कंसिस्टेंसी कितना है लोगों का, और जिनका कंसिस्टेंसी नहीं, पर्सनली हम उनसे मिलके क्या उनके कारण है, अगर आप पब्लिकली नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर जागृति में जो मेंबर्स बने वो कमिटेड मेंबर्स बने। एंड विल बी वेरी वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म दोज हु आर नॉट एबल टू कम अप टू द मार्क टू काइंडली लीव द फोरम। नो हार्ड फीलिंग्स, हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग यहाँ पर कमिटेड मेंबर्स चाहते हैं। तो इनकेस अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है, हम सॉर्ट आउट कर सकें इसके विषय में, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर व्यूज। कोई आपको अगर सजेशंस देने हैं या आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। सो आई एम वंस अगेन इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द कमिटमेंट इश्यू। अब जहां तक, जैसे पिछले बार पूरे जागृति ग्रुप को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुभविलास प्रभु जो आए थे वो जागृति ग्रुप के लिए हमने उनको बुलाया था, बाकी जो एक्स्ट्रा ऑडियंस बैठे थे वो ऑप्शनल थे। तो मुझे पता नहीं कि उस टाइम का अपना अटेंडेंस कितना रहा था। अटेंडेंस नहीं लिया, नहीं 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 अटेंडेंस लिया था, हाँ अटेंडेंस लिया था। तो देखिए ऐसा है कि अभी हम गेस्ट स्पीकर्स को बुलाने वाले हैं, जैसे शुभविलास प्रभु एक गेस्ट स्पीकर, जैसे हमने पहले भी अनाउंस किया था कि गेस्ट स्पीकर्स आने वाले हैं, और अभी जून में द्वारकाधीश प्रभु और विशाखा माता जी वो भी स्पेसिफिकली जागृति ग्रुप के लिए आ रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा इमेज बना के रखना हमारे फोरम का कि उनको हमने इन्फॉर्म किया है, उनका हमने इन्फॉर्म किया है कि हमारे जागृति फोरम के 136 मेंबर हैं जिनको साधना कार्ड दिया गया है और जो रेगुलरली होपफुली मंगल आरती में वो आते हैं। तो ये सब कुछ उनको हम, जो भी गेस्ट स्पीकर आते हैं उनको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये ना हो कि उसके बाद में वो आए और यहाँ पे जैसे आज का हमारा अटेंडेंस है 136 में से केवल 50 हैं, तो कम से कम हम ये गेस्ट स्पीकर्स आने तक चाहते हैं कि हम एक ऑनेस्ट फिगर्स उनको देते रहें कि जो कमिटेड हैं वो लोग आ रहे हैं, और उसको भी आप सीरियसली उतना ही लीजिए कि जितना सीरियसली हम यहाँ पर जो अपनी मीटिंग्स होती हैं। कई बार क्या है, अपना ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि एक फॉर्मल जागृति का अलग से मीटिंग नहीं हुआ तो जागृति नहीं हो रहा है, मतलब तो हम लोग छुट्टी मान लेते हैं उसको, है ना, कि अगर बाकी डिवोटीज के साथ कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि वो ऑप्शनल हो गया, नहीं। इसलिए हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं हम लोग उनको भी ये ब्रीफ कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली अगर आपको मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है तो वो आप इनको रिपोर्ट कर दीजिए कि हमको बराबर मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है। तो आपको क्या एसएमएस का ग्रुप है? तो आपको एसएमएस के ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे या फिर टेलीफोन के लिए आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो एक रिकैप हम लेना चाहेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से एक महीना हो गया हम लोग जो हमारा डिस्कशन प्रारंभ किए थे। तो पर्पस ये तीन, साधना, स्किल्स और सदाचार, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी ले जाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं ये। तो साधक के पांच स्तर, दुराचार, लाचार, विचार, सदाचार और प्रचार। सो फाइनली मैंने जो आप लोगों के साधना कार्ड पिछले कितने एक महीने डेढ़ महीने के देखे, तो उसके अंदर जो सबसे लास्ट कॉलम है, जो मैं चाहता हूं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो जो लास्ट कॉलम है कौन सा, कमिटमेंट टू द मिशन ऑफ इस्कॉन, उसके अंदर बढ़ोतरी हो। सबसे ज्यादा ब्लैंक वही आ रहा है, तो उसके अंदर मैं चाह रहा हूं कि अलग अलग प्रकार से आप, और क्योंकि हमने उसका निकाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका कोर कॉम्पिटेंस, वो सब देखते हुए जो लास्ट कॉलम है वो धीरे धीरे भरना चाहिए, तो वो अभी तक भर नहीं रहा है। तो हाँ, उसको समय लगेगा, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि आपको ऑनेस्टली साधना कार्ड तो भरना है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग भर रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन ऑनेस्टी के साथ साथ आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए उसमें कैसे प्रोग्रेस लाना है वो भी ध्यान में रखते रहिए। नहीं तो हमको पता लगा कि एक साल दो साल बीत गया और हम लोग ऑनेस्टली भरते जा रहे हैं कि हाँ मैंने हफ्ते में तीन पिक्चरें देखी, ऑनेस्टली भर रहा हूं मैं। मैंने हफ्ते में मैं सात बार किधर होटलिंग किया, मैंने प्रजल्प किया, ये किया, साधना कार्ड मैंने ऑनेस्टली भरा है एक साल से। केवल वही उद्देश्य नहीं है कि आप ऑनेस्टली उसको भरते रहें, आप थोड़ा उत्साह, जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो इसका पर्पज है उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, और स्पेसिफिकली आपकी प्रगति हो उसका हम ग्राफ वगैरह बनाएंगे, तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए। ये इसलिए यहाँ पर ये जो दुराचार, लाचार, विचार, सदाचार, प्रचार, ये साधना कार्ड के अंदर आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए कि आपका प्रोग्रेसिव ग्राफ बन रहा है कि नहीं लास्ट प्रचार तक। फिर उसके बाद में हमने ये सारे साधना, स्किल्स और सदाचार के जो तीन हेड्स हैं, इसके अंडर क्या क्या हम शुरू कर दिए हैं और आगे करने वाले हैं। तो द्वारकाधीश प्रभु जो आने वाले हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर बोलेंगे, जून के महीने में वो आएंगे। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हस्बैंड वाइफ डीलिंग विथ ओल्ड पेरेंट्स इन लॉस, जनरेशन गैप्स, तो उसके ऊपर उनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर सेमिनार होगा, तो आप ध्यान में रखिए। फिर हमने चार स्टेजेस हमारे चेतना की, इसकी चर्चा की थी, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृति, फाइनली कृष्ण भक्ति। और जागृति जो कि सत्वगुण में, ये जो स्टेजेस हैं चार, इसमें जागृति सत्वगुण में है। तो वर्णाश्रम जो पद्धति भगवान ने हमारे लिए बना कर दी है, उसका उद्देश्य ये है कि हम एक ऐसे वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान के चरण कमलों तक पहुंचे। तो उद्देश्य इसको ये नाम देने का यही रहा है कि यहां पर यंग कपल्स या कपल्स, यहां पर जो आप लोग हैं गृहस्थ आश्रम में, तो विवाह का अर्थ है विशेष वाहन में, और वो विशेष वाहन जो कि आपको एक विशेष गंतव्य स्थान तक ले जाने वाला है, तो उसकी विशेषता बनाए रखने के लिए, जानने के लिए हम लोग यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। और हमने फिर इंटरडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट समझा था। प्रभुपाद ने ये जो ब्लाइंड मैन और लेम मैन कि कैसे भारतीय और पाश्चात्य ये दोनों संस्कृति का मिलन प्रभुपाद ने इस्कॉन में कराया कि वहां की बुद्धि सॉरी यहां की बुद्धि और वहां की उनके एक्सपर्टीज को कैसे उनका सम्मिलन करके आगे बढ़े। फिर हमने हमारे कंफर्ट जोन के विषय में चर्चा की थी कि ये एक बीमारी कलयुग में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। जैसे कि पानी है, जल है, जल का स्वरूप है कि वो सबसे निचला स्थान ढूंढता है। जैसे आप देखो अभी कुर्सियों पर आप बैठे हो, तुरंत हम इस कुर्सी में भी जो सबसे आरामदायक कोना है वो ढूंढते हैं, है ना, कि अभी उसका एरिया कितना है। उस एरिया के अंदर भी एक हमारे साइकोलॉजी है कि हम कितना उस छोटे से कुर्सी के एरिया में ज्यादा से ज्यादा आराम ढूंढें। क्यों? ये शरीर का लक्षण है कि वो हर समय आलस्य के प्रति आकर्षित रहता है शरीर, वैसे हमारी चेतना हर समय लूप होल्स ढूंढते हैं, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आना चाहते। और कोई भी जब हमारे रेगुलर रूटीन से अलग कुछ करने का प्रस्ताव हमारे सामने आता है तो तुरंत हमारा जो रिबेलियस माइंड है वो उसको नकारना शुरू करता है। और इसलिए ये जो द्वंद्व हमारे अंदर साधना भक्ति में शुरू होते हैं कि ये मैं नियम अपने ऊपर लागू करूं या न करूं, उसकी हम चर्चा और करेंगे। फिर हमने एक इंटरेस्टिंग कोट लिया था, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, तब जाकर जीवन शुरू होता है, नहीं तो तब तक क्या है। एक हमने कोट कहा था, अ डेड मैन इज वेरी कंफर्टेबल इन अ कॉफिन, तो उसके लिए वो जो कब्र है वो बहुत ही आरामदायक है, लेकिन है क्या, कॉफिन है और उसके अंदर कौन आराम से लेटा हुआ है, एक मृत शरीर केवल। तो इसलिए यदि हमको ये लग रहा होगा कि मैं अपने कंफर्ट जोन में आराम के दायरे में प्रगति कर रहा हूं तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। आराम के दायरे में कभी प्रगति नहीं हो सकती, जैसे यहां पर कहा गया, इट ऑलवेज बिगिंस बियॉन्ड अवर कंफर्ट जोन। और होता क्या है कि जब भी हम हमारे सामने कुछ ऐसे नियम या प्रस्ताव सामने रखे जाते हैं कि आपको कुछ कर दिखाना है, प्रगति के रूप में कुछ कर दिखाना है साधना में, आपके स्वयं के जीवन में, तो तुरंत उस समय जब हमको उसके प्रोज और कॉन समझ में नहीं आते तो हम लोग एग्री हो जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उस पर सोच विचार कर जब समझ में आता है कि अरे इसके लिए इसको हमको क्या क्या सैक्रिफाइस करना होगा, तो जब सैक्रिफाइसेस आ जाते हैं सामने तब फिर जस्ट डू इट के बाद में होता क्या है, लेटर। इसको इंग्लिश में एक टर्म है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ है आगे ढकेलते रहना, आगे ढकेलते रहना कि हां शुद्ध भक्त मैं कल बनूंगा, एकदम स्ट्रिक्ट साधक मैं अगले हफ्ते बनूंगा, बस ये हफ्ता थोड़ा गर्मी ज्यादा है, हाँ अभी बादल वगैरह आ रहे हैं, थोड़ा बारिश शुरू हो जाएगा फिर देखना। तो हर समय आगे ढकेलते रहना, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये एक ऐसी बीमारी है कि हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति को तो आगे ढकेलते रहते हैं, परंतु काल का प्रभाव ऐसा है कि वो मृत्यु को अपनी ओर ढकेलते रहता है। तो मृत्यु तो आ रही है और निकट, या हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं, और फिर फाइनली केवल रंज करते रह जाते हैं, काश मैं जागृत हो जाता उस समय, उस जागृति में मैं जागृत हो जाता। फिर हमने रिस्क फैक्टर के विषय में चर्चा की थी, तो अब हम फिर से यहां से प्रारंभ करेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने एक बार उनके अमरीकी शिष्यों से कहा था, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपने अमेरिका क्यों चुना, आप भारत में इतने साल रहे और ये जो भगवद गीता का ज्ञान, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो कि भारत में, जिसके हेडक्वार्टर्स भारत में, भगवान के जितने अवतार सब भारत में ही अवतरित हुए, तो आपने भारत में क्यों नहीं इसको इतने जोर शोर से शुरू किया। तो प्रभुपाद अक्सर इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से जवाब इसका देते। इस समय प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज इंडियंस दे लैक टेकिंग रिस्क जनरली, दे हैव द सेंस ऑफ सिक्योरिटी वेरी मच प्रेविलेंट इन देयर कॉन्शियसनेस। सेंस ऑफ सिक्योरिटी समझते हैं आप लोग, कि हाँ पहले मैं सब कुछ संभाल लूं अपना, उसके बाद जैसे कि हमको बचपन से हमारे माँ बाप क्या सिखाए कि खेलना वेलना सब बंद, पहले स्कूल जाकर पढ़ाई करो, औरों की तरह, पिताजी की तरह, चाचा ताऊ जितने बड़े अभी हैं उनकी तरह तेरे को डिग्री लेनी है, पक्की नौकरी करियर वगैरह वो सब सिक्योर तेरा होना चाहिए, बाकी सारी चीजें वो बेफालतू की। हाल ही में मैं एक यहां पर अपने मंदिर में आते उनसे मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट था और बहुत वो निपुण भी थे, निष्णात थे, ऐसा नहीं थी, कई होता है कि किसी को इंटरेस्ट होता है लेकिन उसके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं होता, लेकिन इनका इंटरेस्ट भी था और ये कॉम्पिटेंट भी थे, लेकिन इनके माँ बाप ने कहा अरे ये गाना बजाना तेरे को तेरी रोज की रोटी नहीं खिलाने वाला, और समाज में क्या बोलेंगे हम, हमारा बेटा गाना बजाना करता है, इंजीनियर बन। उनको इंजीनियर बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी अंदर, तो एक जो प्रभुपाद ने उस समय उनको कहा कि यू अमेरिकन्स यू हैव दिस रिस्क फैक्टर वेरी मच प्रेवलेंट इन यू, रिस्क टेकिंग फैक्टर। और इसलिए जब प्रभुपाद ने वो तीन गृहस्थ डिसाइपल्स को बोल दिया लंदन में जाके आप इस्कॉन का सेंटर शुरू करो, सोचो सन्यासी नहीं, वो तीन गृहस्थ थे और अभी भी उनकी शादी हुई थी, मालती माता जी की तो छोटी सरस्वती जस्ट पैदा ही हुई थी। अब सोचो अगर वही इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद किसी तीन इंडियन गृहस्थ को देते तो बोलते प्रभुपाद क्या, तो पहले वो पूछते थे तो घर वर तो वहां पर है ना कोई किराए पे, या सब कुछ अरेंज्ड है कि नहीं, हमारा रोज का हमारी रसोई तो चलेगी कि नहीं। पहले हम लोग वो सब सेंस ऑफ सिक्योरिटी पूरा उसको अरेंज करके रखते और उसके बाद में फिर ठीक है आप फिर बोलो तो प्रचार कर लेंगे टाइम मिला तो। श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, रेफ्रिजरेटर का डब्बा होता है ना, खाली डब्बा, बॉक्स, बॉक्स के अंदर रहते थे, वो बच्ची को बॉक्स के अंदर रखते थे और उनको कोई अंदाजा नहीं था कि वहां पर वो कैसे इस्कॉन का प्रचार करेंगे, किसको मिलेंगे, इनफैक्ट उनके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो तीनों एक साथ जा सके, क्योंकि वो लंदन में एंट्री करने के लिए आपको कुछ रकम दिखानी पड़ती है। तो एक कपल, मुकुंद महाराज उस समय तो वो गृहस्थ थे, तो उन्होंने एंट्री किया, मुकुंद और जानकी, तो उन्होंने एंट्री पहले, और फिर जो ट्रैवलर्स चेक उनके पास था उन्होंने फिर वापस से उसको बाय मेल, जो दूसरा कपल अभी एंट्री करने वाला है उनको वो चेक दिया, फिर वो दूसरा कपल एंट्री किए, ऐसा तीसरा कपल एंट्री, ऐसे तो उन्होंने एंट्री किया। और श्याम सुंदर प्रभु कह रहे थे कि वो जहां पर रेंट पर थे उनको अगले महीने का रेंट कहां से आएगा, कोई अंदाजा नहीं था, पैसे कहां से आएंगे। बहुत सी अद्भुत चीजें भी हुई उनके साथ, क्योंकि उनको पूरा विश्वास किस पर था, प्रभुपाद पर और भगवान पर पूरा विश्वास था। और आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि भक्ति वेदांत मैनर लंदन में, मैं हर साल वहां पर जाता हूं, वो इतना बड़ा जो मैंशन जॉर्ज हैरिसन उन्होंने डोनेट किया, और क्योंकि उन्होंने इन तीन गृहस्थों की सिंसियरिटी, इनका कमिटमेंट देखा। तो ये जो रिस्क फैक्टर है, हम केवल ये नहीं कह रहे हैं कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई रिस्क लेने हैं, हमारे स्वयं की प्रगति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, फाइनली लास्ट में भगवान हम सब से यही पूछने वाले हैं कि क्या तुम इस क्षण रेडी हो ये सब कुछ छोड़ने के लिए जो कि सजा के संवार के रखा हुआ है तुमने अपनी जिंदगी में, क्या हम रेडी होंगे। तुकाराम महाराज की स्टोरी पता है ना, कि उनकी बीवी वो रेडी नहीं थी, गरुड़ जी आ गए, वैकुंठ विमान आ गए, उसके बाद में तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि अरे भाई इससे अच्छा मौका, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हमारा। उसको उसकी भैंस की पड़ी थी, और ये बहुत सिंबॉलिक है कि भगवान की कृपा, भगवान कई बार टेस्ट करने के लिए भगवान की कृपा ऐसे समय हमको भेजेंगे जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और जिस समय हम प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे हमारे मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में, उस समय भगवान अपनी कृपा भेजेंगे टेस्ट करने के लिए, क्या तुम अभी इसको छोड़ के मेरी कृपा ग्रहण करने के लिए राजी हो क्या। इसलिए हम यदि श्रीमद् भागवत के अलग अलग उदाहरण देखें कि जिन्होंने भगवान की कृपा पाई, भगवत धाम प्राप्त किया, उनके अंदर वो एक जुनून था, उनके अंदर वो खतरा मोल लेने की हिम्मत थी। रिस्क को अगर हम कहें, जैसे ये चित्र में आप क्या देख रहे हो कि इट्स नॉट अ स्टूपिड रिस्क विच दिस एनिमल इज टेकिंग। This animal has faith in its own balance. Therefore, it is willing to stand at the edge of the cliff. तो इसलिए भगवान अपने शास्त्रों में और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा हमको पहले कैसे बैलेंस करना है अपने आप को वो देते हैं। स्टूपिड अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं देते हैं वो करने के लिए, लेकिन हां वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना उस रिस्क फैक्टर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हमने ये स्लाइड दिखाई थी आप लोगों को कि इसके ऊपर हमने कुछ चर्चा की थी कि इसका तात्पर्य क्या है, कि हां हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और प्रभुपाद ने ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, वो तकिए के समान है। ये जो नीचे तकिया है वो पूरा इस्कॉन का ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हर एक दृष्टिकोण से हमको एश्योरेंस और रीएश्योरेंस दिया जा रहा है कि आप यदि अपना सर्वस्व यहां पर दोगे तो आपको रिटर्न्स मैनिफोल्ड टाइम्स भगवत धाम में मिलेंगे। किसी को कोई शक है? क्यों नहीं है शक? क्योंकि जो हमारे एक साइकोलॉजी है ना, कि हाँ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है वहां पर बोला जा रहा है। अभी कोई अगर इस्कॉन का भक्त आपको रास्ते चलते रास्ते में, कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं नासिक में, कोई बुक्स नहीं, कोई डिवोटीज नहीं, कुछ भी नहीं है, रास्ते में ऐसे ही आपको कहे चार नियम पालन करो, सोलह माला करो, भगवत धाम जाओ, कौन हो भाई तुम? नहीं 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 नहीं, मैं चैतन्य महाप्रभु का सैनिक हूं। अच्छा, तुम्हारी बाकी सेना कहां है? बेस कैंप कहां है? वर्दी कहां है? आई कार्ड किधर है? सैनिक का ये सब होता है ना। यदि कोई एक व्यक्ति हमको रास्ते चलते कहता तो क्या हम अपना जीवन सर्वस्व सब कुछ देते? नहीं। तो हम लोग क्यों, जैसे हम लोग ये इतने गीता कोर्सेज और ये कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स, न्यू कमर्स के लिए प्रोग्राम्स जो भी करते हैं, तो उनको कितना, आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं प्रचार कार्य में, तो कितना उनको बोलना पड़ता है कि भाई इस्कॉन के मंदिर में। अच्छा, तो इतने सालों से जो इस्कॉन का रेपुटेशन है वो सुनने के बाद फिर लोग विश्वास कर आते हैं कि हाँ भाई इस्कॉन का प्रोग्राम है, इनका वेन्यू अच्छा होगा, इनका प्रेजेंटेशन ठीक ठाक रहेगा और पैसे वसूल होंगे, फाइनली इट विल बी वर्थ अवर टाइम। हाँ वही, और कुछ नहीं, खाली पेट तो भेजते नहीं है लोग। तो देखिए, हमारे लिए प्रभुपाद ने जो इस्कॉन फॉर्म के कितना आसान बना दिया है। यदि चैतन्य महाप्रभु के टाइम गदाधर पंडित उनको यदि भागवत किसी को कॉपी देनी होती तो खुद उनको लिखना पड़ता था, एक ही कॉपी थी भागवत की उनके पास। यहां पर यदि कोई बोलता है कि भाई मेरे को भगवत गीता के बारे में जानना है, मुझे रोज भगवत गीता पढ़नी है, आप दे सकते हो? हाँ भाई, भर भर के अब अपने घर की दे देते हैं, लो क्यों? मैंने तो अभी तक खोली नहीं। तो यदि कोई ग्रंथ मांगना चाहे, ज्ञान लेना चाहे, तो हमारे पास भर भर के आजकल सीडीज हैं, इस्कॉन डिजायट्री वेबसाइट है जिसके अंदर कितने 18,000 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, वो लिंक उनको दे दो, भगवत गीता हार्ड कॉपी में, डीवीडी, सीडीज, इंटरनेट, कहां कहां क्या क्या नहीं आप दे सकते उनको। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि प्रभुपाद ने बहुत सोच समझ कर ये तकिया हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया है। इसको भूले ना, इस तकिए को ना भूलें। और यदि हम तकिए को नहीं भूलेंगे, देन वील बी एबल टू वॉक ऑन द टाइट रोप फियरलेसली। अब ये व्यक्ति जो ऊपर एकदम निश्चिंत भाव से उस टाइट रोप पर चल रहा है, उसको पहले तकिया दिखाया गया है। हम लोग प्रहलाद महाराज की तरह नहीं है, है ना? हम भी जानते हैं, कई बार नाम हो जाएगा हमारा, दीक्षा में नाम मिल जाएगा प्रहलाद दास, लेकिन पूछा जाए चलो भाई तुमको पर्वत की चोटी से फेंक के देखते हैं, या हिरण्यकश्यपु जैसा एक व्यक्ति लाते हैं, इसको प्रचार करके देखो थोड़ा। तो हाँ, क्योंकि हमारी खामियां हैं, त्रुटियां हैं, इसलिए हमको सब चीज का सहारा लेना पड़ता। प्रभुपाद अपने शिष्यों को एक बार कहे थे, एक्चुअली आइडियली वी शुड बी जस्ट गोइंग टू मायापुर एंड चैंट 24 आवर्स अ डे, बट बिकॉज यू आर सो पैशनेट यू कैन डू दैट, देयरफॉर आई एम गिविंग यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है जाके उधर प्रचार करो, ये करो, बुक्स बांटो, सेंटर खोलो। तो इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था के थ्रू हमें ये इतना बड़ा विशाल तकिया दे रखा है। तो कोई फिर प्रश्न कई बार लोग क्या पूछते हैं, अरे तो जब तकिया दिया है तो फिर टाइट रोप पे क्यों चलने बोल रहे हैं, सीधे तकिए पे बिठाओ ना, वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, कि फिर सीधा तकिए पे बिठाओ, फिर ऊपर चलने को क्यों बोल रहे हैं, क्या कहोगे आप, हाउ विल यू आंसर दिस। इफ प्रभुपाद हैज गिवन अस दिस पिलो ऑफ रीअश्योरेंस, व्हाई इज ही एक्सपेक्टिंग अस टू स्टिल वॉक ऑन द टाइट रोप। गुड, विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, और क्या, शो द सिंसियरिटी, ब्रिंग अदर्स ऑन द टाइट रोप, नो बट दे विल बी स्केर्ड कि भाई तुमको तो इस पे चलने के लिए बोला जा रहा है, उल्टा हो जाएगा ना। सबको अपना प्लेन खुद ही उड़ाना पड़ता है, उसके लिए सीखना भी पड़ता है। या द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कृष्णा वॉन्ट्स टू नो दैट यू वॉन्ट टू कम टू बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। भगवान ये टाइट रोप पे चलने के द्वारा या चलाने के द्वारा भगवान ये देखना चाहते हैं कि क्या तुम्हारी इच्छा है क्या भगवत धाम आने की, और हां हम टाइट रोप पर चलकर भगवान को बताना ये चाह रहे हैं कि हां भगवान मेरी इच्छा है कि मैं भगवत धाम, बिकॉज लव इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री विल। Walking on tightrope shows our free will. इसलिए जागृति में आपका commitment shows your free will. Okay. तो मेरे ख्याल से हमने पिछली बार initiate किया था ये the different types of risks which devotees have taken in their lives. If in case anyone has left out sharing, कोई अगर share करना चाह रहा है, share नहीं किया last time, कोई भी प्रकार का risk चलेगा, लेकिन उसे हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो है क्या हमारे अंदर, do we have that factor in us, risk taking factor, वो है क्या, और वो जानने की कोशिश हमने इसलिए भी की थी कि यदि हमने इस्कॉन में आने से पहले इतने बड़े बड़े रिस्क लिए तो भगवान के लिए क्यों नहीं, भगवान के सामने फिर हम दब्बू क्यों हो जा रहे हैं। ये वर्ड सुना आपने, टिमिड, टिमिड, व्हाई वी आर बिकमिंग टिमिड इन फ्रंट ऑफ कृष्णा व्हेन वी वर लाइक अ लायन बिफोर कमिंग टू कृष्णा। Anyone had left out sharing? Yes, Prabhuji. Ek minute, mic. Thoda pani leke.
Yeah, Prabhuji, actually before ISKCON, matlab bahut jab main chota tha.
Hari bol, hai pani. Rehne.
About, you know, I was in 7th or 8th, something like that. So we were staying in a remote area of Akola city. तो वहां पे ऐसा होता था कि देर वर लॉट ऑफ स्नेक्स एंड कोबराज एंड लाइक दैट थिंग्स, सो वी वर स्टेइंग अमंग्स्ट देम आई कैन से, एंड मेनी टाइम्स यू नो आई वाज गोइंग फॉर जॉगिंग और आके आता था सुबह में और आके सो जाता था, सो अराउंड 7 o'clock माई मामा वॉज वेकिंग मी अप, कि 6:30 बजे आके सो जाता था, 7:30 बजे उठाती थी और बोलती थी कि अरे अपने कुएं में सांप गिर गया, निकालो उसको, पानी भरना है, कुकिंग करना है,
सांप को निकालो.
यस. सो इट वॉज लाइक यू नो 8 दिन में 10 दिन में एक बार ये इवेंट हो ही जाता था कि सांप गिर गया.
कैसे निकालते
थे सांप? सो कुल्हाड़ी लेके जाता था, सामने ऐसा ओपन एरिया था, वहां पे एक कांटे के ऐसे छोटे छोटे पेड़ थे, उनको तोड़ना, दैट इज द फर्स्ट थिंग, उसको रस्सी बांधने का, उसको अंदर छोड़ना, तो उसके ऊपर वो सांप आ जाता था. देन यू पुल इट अपने पास में, और ज्यादा पास में है तो काटेगा आपको, तो एक लकड़ी रखना है, तो लकड़ी से उसको पकड़ के ऐसा बाजू में रखना है. तो मेनी टाइम्स इट वॉज कमिंग ऑन यू, मेनी टाइम्स इट वॉज गोइंग दैट साइड. तो ये इट हैज बिकम यू नो एवरी डे, रोज सुबह उठ के किल करना लेजीनेस आता था कि सांप को मारना है, हर बार दोस्तों को बुलाना है. सो दिस काइंड ऑफ रिस्क यू नो इट वॉज लाइक एवरी डे, मतलब महीने में 2 बार 3 बार ऐसे इवेंट हो ही जाते थे. सो काफी बार वी वेर यू नो अमंग्स द स्नेक्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. वो पर्टिकुलर एरिया में अभी भी मैं जाता हूँ तो देर आर स्टिल यू नो फ्यू स्नेक्स आर देर.
सो अगली बार यहाँ पे सांप आए तो आपको बुलाएंगे.
लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि दैट इज अ बिग रिस्क यू नो आई वॉज टेकिंग एंड अनोइंगली यू नो दैट वॉज हैपनिंग द थिंग्स. So,
yeah,
because of the living in a remote area, there are a lot of risks were there. एक दो बार तीन चार चोर लोग आए थे तो उनके पीछे मैं भागा था. And you know, I was shouting, रुको रुको, I want to fight with you, this kind of things. But घर में कोई नहीं था, I was alone. But then now I'm realizing, oh, what a mistake. अगर रुक जाते थे तो मेरा problem होता था.
अच्छा, आप black belt?
Yes.
Wow.
So, बट दैट टाइम नहीं था.
तो देखिए सांप के साथ मतलब ये सही में मानना पड़ेगा कि जानते हुए कि अंदर सांप है और उसको निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क. तो और वो भी बहुत बड़ा क्यों? क्योंकि खाली 7th स्टैंडर्ड में थे ना. 7th स्टैंडर्ड में थे प्रभु जी.
और फिर बाद में वो पोटेशियम परमैंगनेट करके एक मेडिसिन आता था.
हाँ.
जो कि आपको कुएं में डालना है, 15 मिनट रुकना है, देन यू कैन ड्रिंक दैट वाटर. और अगर आपके इंटेस्टाइन में अगर
ये सबसे बड़ा रिस्क है उस कुएं का पानी भी पीना भी.
अगर इंटेस्टाइन में कहीं पे कट है तो देन अगर सांप का जहर आप पीते हो तो आप मरते नहीं हो. बट अगर सांप का जहर पीते हो मुंह में छाले है या इंटेस्टाइन में कहीं कट है तो देन यू विल डाई. सो दैट काइंड
ऑफ देखो होता क्या है कि जो प्रभु जी बोल रहे हैं, हम लोग देखे हैं कि जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो भक्ति का प्रोसेस इतना रिफाइंड है. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्योरिटी, योर लाइफस्टाइल, फॉलोइंग द 4 प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्योरिटी. तो उसके बाद में एनीथिंग विच इज इम्प्योर यू बिकम फियरफुल. जैसे मुझे खुद का मैं अपना एक अनुभव बताऊंगा, शायद आप लोगों का भी यही रहेगा कि पहले जब मैं ट्रेन से ट्रेवल करता था तो आज प्लेटफॉर्म पे जाके बॉटल भर लिया. हाँ, कितने लोग करते थे? प्लेटफॉर्म पर जाकर बॉटल भर लिया अपनी खाली. अभी वही प्लेटफॉर्म है, वही नल है, लेकिन अभी घाबर तो वो बॉटल भरने में डर लगता है, वो पानी पीने में डर लगता है. तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं, हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो गई. और फिर हम दूसरों को देखते हैं, कई बार मैं देखता हूं अनशंट पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं बाहर. मैं एक बार वो इगतपुरी स्टेशन में देखा मैंने, ये किस्सा मैं कभी भूलूंगा नहीं. वो इगतपुरी स्टेशन आप जानते हैं फेमस किस लिए? जानते हैं ना. विथ म्यूजिक बता रहे हैं, साउंड इफेक्ट. तो वहां पर मैंने देखा एक पर्टिकुलर बाहर उसने सजा के रखा हुआ था, ऐसे वो वड़े का पर्वत बनाकर रखा हुआ था और लोग आके खरीद रहे थे उससे. और फिर ट्रेन चालू हुई और सब लोग फिर धीरे धीरे जो पैसेंजर अपने बोगी में घुसे, फिर मैं उसको देख रहा था तो तो उसके उतना बड़ा जो उसका ट्रे था उसमें से दो बड़े गिर गए नीचे प्लेटफॉर्म पर गिरे, और वो कहां पर गिरे, जहां पर किसी ने अपना गला साफ करके थूका हुआ था। तो अब ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी थी ऑलमोस्ट, तो मैं थोड़ा बाहर जाके देख रहा था कि अब ये करेगा क्या दो वड़े का। तो उसने तब तक उठाया नहीं, ट्रेन सामने से गुजर रही थी, तो ट्रेन पूरी जाने के बाद फिर उसने उठाया वापस से उस ढेर में रख दिया, वेटिंग फॉर नेक्स्ट ट्रेन न्यू कस्टमर्स। तो मैं वही सोच रहा था कि अभी के जो कस्टमर्स गए उन्होंने जो खरीदे हो सकता है कि वो पिछली ट्रेन के गिरे हुए बड़े होंगे। तो मैं सोच रहा था कि लोग बाहर, आप भी देखते होंगे कि कई बार ट्रैवल करते समय नासिक में यहां पर बेधड़क आगे पीछे कुछ देखना नहीं, उसने उसके सामने वो जो चाय की दुकान होती है ना, जो ठेले होते हैं चाय के, एक इतनी सी बकेट सुबह से उसके अंदर ही वो ग्लास डुबो रहा है, और मतलब दिन के एंड तक तो उसको चाय बनाने की भी जरूरत नहीं, वो लोगों की बची हुई चाय उसमें डुबो डुबो के वो इतनी सी बकेट वो भी चाय बन गई होगी अभी तक, और उसमें से उसके सामने कर रहा है वो, और वो लोग बेधड़क पीते जा रहे हैं और उनको कुछ होता भी नहीं है, और हम लोग यहां पर थोड़ा सा यहां पर उल्टा सीधा कुछ खा लिए तो गला बैठ गया, पेट खराब है, दस्त हो गए, ये वो। कारण क्या है, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही रिफाइंड जीवन जी रहे हैं, इसलिए सब कुछ हमारी चेतना सब कुछ बहुत सेंसिटिव होते जाता है, एंड दैट्स गुड, दैट्स साइन ऑफ प्रोग्रेस। तो कई बार हमको उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि ये लोग बेधड़क होकर कुछ भी कहां पर भी खा रहे हैं पी रहे हैं, मतलब ये प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए कि हम भी वो शुरू कर दें। द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग करेज टू डू समथिंग फॉर कृष्ण, ये मेन मुद्दा ही है। फिर से हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई, एनीवन एल्स? अब हम मिशन स्टेटमेंट, यहां पर कौन हम तैयार करना चाह रहे हैं, मिशनरीज, तो मिशन स्टेटमेंट, आर यू रेडी फॉर द मिशन स्टेटमेंट? इफ यू वॉन्ट समथिंग विच यू नेवर हैड बिफोर, यू ऑल वॉन्ट, अच्छी से, then do something which you have never done before. And that is the secret of progress in Krishna consciousness. Why? Because Chaitanya Mahaprabhu is offering anarpita charim chirat. Anarpita, matlab, first line jo hai kya hai? जो कभी नहीं अर्पित किया गया, किसी अवतार ने किसी युग में कभी अर्पित नहीं किया, वो चैतन्य महाप्रभु लाकर दे रहे हैं। अनअर्पित चरिम चिराग करुणा अवतीर्ण कलो, इस कलयुग में करुणावश चैतन्य महाप्रभु इसलिए अवतरित हुए, टू गिव अस विच वी हैड नेवर एवर बीन गिवन बिफोर। But for that, Chaitanya Mahaprabhu is asking, you have to do what you have never done before. So, अब यदि ये हमारे Krishna consciousness का mission statement है, तो हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कि हम लोग कृष्ण भक्ति में जो आए हैं, हो सकता है यहां पर उपस्थित कई कृष्ण भक्ति में 10 साल पहले आ चुके हैं, कई लोग 1 साल पहले, कई लोग हो सकता है कि कुछ महीनों पहले आए हुए हैं, लेकिन हां यहां पर हम लोग सब बैठे हुए हैं, कम से कम इतना तो कन्विंस्ड है कि यहां पर हमको कुछ ऐसी वस्तु मिलने वाली है या मिल चुकी है कुछ हद तक, जो हमें बाहर कहीं पर भी घूमो, आप कॉलेज रोड जाओ, गंगापुर रोड जाओ, नासिक रोड जाओ, देवलाली, कहीं पर भी जाओ, नहीं मिलने वाला वो आपको यहां पर। इसलिए तो आप लोग भाग भाग कर मंदिर के कार्यक्रमों में, मंगल आरती में, फेस्टिवल्स में, चैंटिंग, सेवा, इसके लिए क्यों आ रहे हो? कोई लॉटरी तो नहीं मिल रही यहां पे आपको? यहां पर आने से उल्टा, यहां पर आने के बाद ये सब सुनाया जा रहा है, ये साधना कार्ड, ये कमिटमेंट, वो नियम, अटेंडेंस, अरे बाप रे, फिर भी क्यों आ रहे हो? इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाई यू आर कमिंग? दिस इज द मिशन स्टेटमेंट, बिकॉज यू हैव फेथ दैट यू विल गेट समथिंग which you will not get anywhere else, not through anyone else. आप लोगों को ये विश्वास है कि नहीं? और इसलिए जब ये बताया जाता है कि आपको उस अनोखी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ अनोखा करना है, और उस अनोखे चीज को करने के लिए आपको अनोखा बनना है, तो जब आप परिवार में वापस जाते हो या आपके पुराने मित्रों के संग में वापस जाते हो और वो लोग जब कहते हैं, यार तू तो बदल गया, तू बदल गया, तो उसको कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए आपको, अरे किसी ने तो रिकॉग्नाइज किया मैं बदल गया है? राधा गोपीनाथ प्रभु आए थे, वो एक बार मेरे को बता रहे थे एक अच्छा इंसिडेंट, कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे 1-to-1, तो 1-to-1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने एक व्यक्ति को भगवत गीता दिखाई और उसने कहा, ये किताब बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये किताब मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो सब कुछ मेरे अंदर बहुत बदलाव होने लग जाएगा। तो राधा गोपीनाथ प्रभु को एक साक्षात्कार हुआ कि ये व्यक्ति में इसको इतना विश्वास है इस गीता के अंदर, दिस पर्सन हैज सो मच फेथ इन गीता दैट इज नॉट टेकिंग गीता fearing that he will change. और मैं हाथ में गीता रखा हूं, रोज मेरे पास ये गीता मैं पढ़ता हूं, क्या मुझे इतना विश्वास है क्या इस गीता में? तो इसलिए ये जो मिशन स्टेटमेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये है कि दोनों दृष्टिकोण से, जो भगवान द्वारा दिया जा रहा है और जो हमारे द्वारा हमको करना है उसको प्राप्त करने के लिए, दोनों चीजें इस भौतिक धरातल से परे है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं भौतिक तरीके से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूंगा, तो ये जगह उसके लिए नहीं। और कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं आध्यात्मिक बनने के बाद मुझे कुछ भौतिक मिलेगा, ये डर अगर उसके अंदर है, कई बार हमको ये डर रहता है ना, अरे मैं इतना आध्यात्मिक सब कुछ कर रहा हूं, इतना मैंने परिवर्तन ले आया मेरे जीवन में, पता नहीं मेरे को इसके बदले में, इस बलिदान के बदले में क्या मेरे को ये लोग जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो सब कुछ मिलने वाला है कि नहीं, कि खाली ख्याली पुलाव है? ये जो डर है, कई बार ये प्रश्न उठते होंगे हमारे अंदर, ये भी एक परीक्षा है. दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट. कैसे परीक्षा? क्योंकि भगवान कई बार हमारे बड़े बड़े बलिदानों के बाद भी हमको थोड़ा सा एक जस्ट चखने के लिए कुछ देंगे. कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम की थाली में से इतना सा अचार निकाल के थोड़ा सा देंगे, ले दिखाएंगे नहीं थाली. हाँ दिखा दिया तो थाली तो है कम से, नहीं कई बार थाली भी नहीं दिखाते, उसमें से थोड़ा सा शैडो अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे नारद मुनि को उन्होंने दिया. तो कई बार भगवान ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या तेरे अंदर वो विश्वास, अटूट विश्वास, इम्प्लिसिट फेथ मेरे अंदर है कि नहीं. तो ये है हमारे भक्ति की शुरुआत. जब हम मिशन स्टेटमेंट जान लेते हैं, देन वी कैन बिकम मिशनरीज टू अचीव कृष्ण प्रेम. फर्स्ट टू अचीव कृष्ण प्रेम, देन टू गिव कृष्ण प्रेम. तो अभी थोड़ा सा हम डिस्कशन इसमें इनिशिएट करना चाहेंगे कि जब आप नए नए कृष्ण भक्ति के कॉन्टेक्ट में आए, तो क्या आपको ये मिशन स्टेटमेंट के संदर्भ में कुछ लगा, कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मैं एक ऐसे जगह पर आया हूं जो हटकर है, जगह, लोग, प्रणाली, सब कुछ थोड़ा हट के है यहां पर, लगा ऐसा? टेम्पल विथ अ डिफरेंस, वर्शिप विथ अ डिफरेंस, फूड विथ अ डिफरेंस, डांसिंग विथ अ डिफरेंस, लेक्चर्स विथ अ डिफरेंस. प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो अब देखो प्रभुपाद का कारनामा. मैं एक्चुअली ये मुद्दा मैं आपको अगली स्लाइड जो मैं दिखाने वाला हूं उस पे हम लोग डिस्कशन इनिशिएट करने वाले हैं. अभी ये है जो मैं अक्सर अपने कुछ सेमिनार्स में इसको इनिशिएट करता हूं, ये डिस्कशन को, द वाव फैक्टर, द वाव फैक्टर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. सब लोग समझते हैं ना वाव मीन्स क्या. अब ये जो वाव फैक्टर है, ये एक ऐसा फैक्टर है कि इसके वजह से हमारी हमारी जिंदगी में जो भी कुछ अनोखा होता है, डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन, दैट्स कॉल्ड द वाव फैक्टर. एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन इज कॉल्ड द वाव फैक्टर. और मनुष्य हर समय हर चीज डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन करता है. आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मनुष्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन रूटीन से अलग करता है. वी ईट विथ अ डिफरेंस, वी स्लीप विथ अ डिफरेंस, वी मेट, वी डिफेंड आवरसेल्व्स विथ अ डिफरेंस, नॉट लाइक एनिमल्स. क्या है? सोफेस्टिकेटेड. तो अब जब हम कृष्ण भक्ति में आए, तो अब मैं पूछना चाहूंगा, ये थोड़ा डिस्कशन हम एट लेंथ करेंगे, हो सकता है अगले सेशन में भी करें, कि आप लोग जब कृष्ण भक्ति में आए तो कौन सा वाव फैक्टर आपने देखा कि जो आपको सेकंड टाइम लेकर आया. फर्स्ट टाइम तो हो सकता है वी जस्ट बम्प्ड इनटू, जो बोलते हैं, व्हाट ब्रॉट यू सेकंड टाइम might be the wow factor of Krishna consciousness. So I'll start from my own wow factor. मेरा वाव फैक्टर सबसे पहला ये था, अमेरिकन ब्रह्मचारी फॉलोइंग वैदिक लाइफस्टाइल. वाव, द एक्सप्रेशन एंड द वर्ड विच केम आउट व्हेन आई सॉ एन अमेरिकन ब्रह्मचारी फॉलोइंग वैदिक लाइफस्टाइल, व्हाट वाज दैट वर्ड फर्स्ट केम आउट? वाव. तो मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया है, दिल्ली में, दिल्ली इस्कॉन में जब मैं पहले दफा, मैंने डीटीज से भी पहले जब मैंने एक फॉरेनर डिवोटी को देखा, सैफ्रॉन, तो मुझे लगा दिस इज द रेयरेस्ट साइट आई हैव सीन इन माय लाइफ, वन ऑफ द रेयरेस्ट साइट. और फिर जब उस अमेरिकन ब्रह्मचारी से वार्तालाप करने के बाद जब मुझे पता लगा कि भगवत गीता के वजह से इसके अंदर यह परिवर्तन आया, तो सेकेंड टाइम वाव निकला. और थर्ड टाइम वाव कब निकला मेरा? जब प्रभुपाद की जीवनी मैंने पढ़ी और प्रभुपाद के लेक्चर्स और प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स मैंने जब पढ़े, और उसके अंदर क्या पढ़ा मैंने, प्रभुपाद का लेक्चर सुने, अमेरिका प्रभुपाद गए, अमेरिका में जाने के बाद प्रभुपाद के लेक्चर्स, हार्ड कोर फिलॉसफी, नो कॉम्प्रोमाइज, अमेरिकन को प्रभुपाद बोल रहे हैं नो मीट ईटिंग, उनको बोल रहे हैं नो इलिसिट सेक्स, उनको बोल रहे हैं नो इंटॉक्सिकेशन, सामने सब नशेड़ी, कबाबी, जुआरी, शराबी सब बैठे हुए, हिम्मत चाहिए उनको मुंह पे बोलने के लिए, हिम्मत चाहिए, हिम्मत. तो वाव फैक्टर पे मैं आ रहा हूं. तो मेरे मुंह से वाव कब निकला कि एक 70 वर्षीय भारतीय बंगाली सन्यासी अमेरिका जाता है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में भी ऐसे नहीं कि जहां पे सब लोग चर्च में क्रिश्चियंस अच्छे से सब रिलीजियस तरीके से फॉलो, न्यूयॉर्क जहां पर ये सारे अतरंगी ये लोग सब घूमते फिर रहे, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, मैं वहां पे जाके भी आया, आज दिन तक टॉमकिंस स्क्वायर पार्क पर ऐसे प्राणी घूमते हैं दो पैर वाले, यही वर्ड में सबसे क्लोजेस्ट मेरे को यही वर्ड सूझा, ऐसे प्राणी घूमते हैं कि वो 4 लाख मनुष्य योनि में भी नहीं कहोगे आप उनको. वहां पर जब हिप्पी कल्चर अपने पीक पर था, उस टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जैसे शुद्ध वैष्णव जिन्होंने बचपन से वैष्णवता का पालन किया, वो वहां पर बैठकर इन हिप्पियों के बीच में, ये नहीं कि कोई इंग्लिश गाना गा रहे हैं उनको आकर्षित करने के लिए, नहीं, अपना रेगुलर उनका हरे कृष्णा ट्यून, प्रभुपाद को जो हरे कृष्णा ट्यून है वो कॉन्गो ड्रम के ऊपर बजा रहे. और वो लोग जब आए सुनने के लिए तो प्रभुपाद ने ऐसे नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज लेक्चर दिया कि हाँ चलो इनको थोड़ा सेकंड टाइम बुलाने के लिए अच्छे से थोड़ा इनकी चापलूसी करके ऐसा कोई लेक्चर दूं. ड्रेस भी नहीं बदला अपना सैफ्रॉन में, बहुत से प्रभुपाद को कहे कि आप ये इसके अंदर जा रहे हैं, आपको अगर उनको प्रचार करना है तो आप सूट में जाओ, यू हैव टू वेयर सूट एंड यू हैव टू यूज फोर्क एंड नाइफ. तो मेरे अंदर वाव फैक्टर क्या आया कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, हाँ, तो आप सबसे पहले उसके ऐसे फीचर्स बताओगे ना कि जो सबको प्लीजिंग अपीलिंग लगे। प्रभुपाद की बेसिक फिलॉसफी गोलोक वृंदावन वगैरह नहीं, सबसे पहले एवरीवन यू आर ऑल सिटिंग यू आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, यस एनीथिंग इन कनेक्शन विद द बॉडी सेंस ग्रेटिफिकेशन विल टेक यू टू हेल। लंदन में प्रभुपाद को पूजा, सो यू हैव कम टू लंदन, यू बिलीव इन हेल, हा लंदन इज हेल। हिम्मत चाहिए, लंदन में प्रभुपाद सरेआम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज हेल, लंदन इज हेल। तो वो कंफ्यूज हो गया, वो ब्रिटिशर वो कंफ्यूज हो गया कि उसको लग रहा था कि वो प्रभुपाद को थोड़ा चेकमेट करके ये हेवन हेल, इसने तो लंदन को हेल बोल दिया। फिर वो व्हाट अबाउट द ग्रीनरी इन लंदन, इट्स ग्रीन हेल। प्रभुपाद टस से मस नहीं हुए, ग्रीन हेल बोल दिया। तो मैंने जब प्रभुपाद के विषय में ये जाना कि ये आदमी ही इज नॉट आफ्टर चीप ग्लोरिफिकेशन, है ना, ही इज आफ्टर गिविंग सब्सटेंस। इतना हार्ड कोर बोलने के बावजूद इतने लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहा है, वाओ दिस इज अमेजिंग। हम लोग देखते हैं भागवत के कथाकार जो होते हैं एकदम रसिक चीजें बोलते रहते हैं क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे कि हाँ बस ऐसे लगता है कि हाँ हमसे कोई अपेक्षा नहीं की जा रही, हमको कभी नहीं कहते कि आपको शरणागत होना है, नहीं बस जैसे भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे आप भी एक गोपी हो, अरे वाह भगवान आपके साथ भी उसी प्रकार से नाचेंगे, डोलेंगे, बांसुरी बजाएंगे, अरे वाह। प्रभुपाद सबसे पहले कहे मैं बताता हूं कृष्ण की बांसुरी की क्या ध्वनि निकलती है, भगवद गीता का दूसरा अध्याय देहिनोस्मिन यथा दे, ये भगवान की बांसुरी है हम बद्ध जीवों के लिए। तो ये सब कुछ बोलने के बावजूद इतने लोगों को अट्रैक्ट कर पाए प्रभुपाद, तो ये मेरा वाव फैक्टर रहा। ऑफ कोर्स उसके बाद में तो बहुत से वाव फैक्टर्स रहे, तो मैं इनिशिएट करना चाह रहा था अपने से कि इनिशियली व्हाट ब्रॉट मी सेकेंड टाइम। एनीवन वांट टू, या वृंदावन प्रसाद प्रभु,
हरे कृष्ण प्रोजी। सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे इस्कॉन में आने के लिए इंट्रोड्यूस किया,
एक मिनट, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था ना मंगल आरती का, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंगल आरती में जो हमने नियम रखा है कि हफ्ते में एक बार, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई हमारे जागृति के ऐसे मेंबर निकले कि बोले प्रभु जी हफ्ते में एक बार क्यों। तो वृंदावन प्रसाद प्रभु और उनकी धर्मपत्नी एक है जो पिछले 15 दिनों से मंगल आरती रोज आ रहे हैं, बोलो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग।
तो सबसे पहले मेरा वाव इफेक्ट ये था कि मुझे इस्कॉन में आने के लिए जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो आज यहीं पर हैं, हरिप्रिया माता जी बम्बई से आई हुई है, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि आप ऐसे आते जाओ, और मैं जब कभी उनको फोन करता था तो हेलो के बदला हरे कृष्णा बोलते थे, तो सबसे पहला वाव इफेक्ट था कि ये क्या अलग ही चीज है, नॉर्मली सब लोग हरे हेलो बोलते हैं ये हरे कृष्णा बोलते हैं। तो मैं इस्कॉन में आया कि इनको इस्कॉन से बाहर निकालना है, क्योंकि ये हमारे ग्रुप में जो नॉर्मल बिहेवियर था वैसे बिहेव नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं और हमारी और एक फ्रेंड थी जिन्होंने तय किया था कि मैं जाता हूँ, इनका जो ब्रेन वॉश हुआ है वो ब्रेन वॉश करके नॉर्मल करके इनको फिर से हमारे नॉर्मल ग्रुप में लेके आएंगे। मगर मैं आया और मेरा ही ब्रेन वॉश इधर हो गया. तो इस्कॉन में
कॉलेज फ्रेंड्स थे क्या?
यस यस यस.
अच्छा,
वी आर कॉलेज फ्रेंड्स. तो इस्कॉन में आने के बाद में मैंने एक देखा कि गौर पूर्णिमा थी और बहुत ही शुद्ध तरीके से ऐसे 200-300 आइटम वहां पर रखे हुए थे और इतना शुद्ध अभिषेक देखा, तो मुझे हमारे घर की सत्यनारायण की पूजा याद आ गई. जिसका परचेसिंग करने के लिए मैं जब जाता था तब वो हम लोग जो बादाम है वो एकदम कीड़े सड़े हुए बादाम, वो उसका एक खास दुकान है नासिक में, यहाँ पर जो जो कोई भी यूज नहीं करता है वो सब माल उधर भेजते हैं और वो सब पूजा साहित्य के लिए यूज होता है. तो मेरा वही एक्सपीरियंस था कि हम लोग घर में जो कुछ भी पूजा अर्चा करते वो तो इतना फालतू मटेरियल होता है और ये लोग तो केक और क्या क्या रबड़ी और सब कुछ ये चढ़ा रहे, ना केवल चढ़ा रहे मगर बांट भी रहे, वो प्रसाद हमने लिया भी है ऐसे ही है. तो वो एक सेकेंड वाव इफेक्ट था कि पहले से मेरे मन में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे कि भगवान है कि नहीं है. मैं मानता था भगवान है. अच्छा, आप लोग कृष्ण बोलते हो तो ठीक है, कृष्ण भगवान है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था. मगर यही था कि इतने अच्छी तरीके से शुद्ध तरीके से जो भक्ति होती है वो एस्पेक्ट मैंने देखा. बाद में एक वाव इफेक्ट था वो ये कि परमहंस प्रभु एक IITian होकर जिनको बाहर जाकर लाखों रुपए की नौकरी मिल सकती है, ये लोग यहाँ पर आकर इतना अच्छी तरीके से प्रचार कर रहे हैं. तो मेरा एकदम सिंपल लॉजिक था कि मैं तो इतना डफर हूँ तो ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इन्होंने बुक्स पढ़ के इन्होंने कुछ तो तय किया होगा कि ये बराबर है, तो ये फॉलो कर रहे हैं तो अपने को भी इधर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो मेरा एक बेसिक फेथ था कि इतने पढ़े लिखे लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं, वो एक फैक्टर था वाओ कि इतने अच्छे लोग पूरा डेडिकेशन से यहाँ पर आ रहे हैं. फोर्थ फैक्टर था वो ये था कि प्रभुपाद जी के बुक्स, हालांकि मैं मराठी मीडियम से हूँ फिर भी मैं इंग्लिश में प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ रहा था, तो मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इंग्लिश का किताब पढ़ रहा हूँ और मेरे को समझ भी रहा है ये क्या लिख रहे हैं. तो प्रभुपाद जी को की जो सिंपल लैंग्वेज है उससे जो क्लियर कट मैसेज वो देते हैं उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट किसी भी एक सामान्य रीडर के ऊपर होता ही है. इसीलिए वो एक पार्ट था कि प्रभुपाद जी ने इतना सिंपल करके चीजें बताई, क्योंकि मैं बुक्स पहले से पढ़ता था तो मैंने बहुत सारे ज्ञानी वगैरह इन लोगों ने जो अध्यात्म के बारे में बताया वो बहुत सारा पढ़ा था, अगर वो मेरे पूरे ऊपर जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी के काबिल ही नहीं क्योंकि हम लोग ये बेसिक भी नहीं समझ सकते. मगर प्रभुपाद जी ने वो बेसिक एक कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आप ना केवल समझ सकते हो मगर आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो. और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि अच्छा सिंगिंग करना है और अच्छा खाना है और अच्छा पढ़ना है, तो तीनों पार्ट स्पिरिचुअलाइज्ड हो गए सब चीज़ों में. तो जब कीर्तन मुझे परमसुरु ने चैलेंज किया था कि आपको लगता है ना कि इधर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, तो आपको जो अच्छा लगता है वही सिंगिंग, आप सिर्फ वो जो भावगीत गा रहे हो तो वही आप सिर्फ ये हरे कृष्णा में गा के देखो आपको कैसे लगता है, तो वो गा के देखा तो वो एक वाव इफेक्ट आया कि अरे हाँ ये इतना सुंदर है. प्रसादम में तो इसको कोई भी पकड़ नहीं सकता है और बुक्स के लिए तो प्रभुपाद जी है. तो इन सब ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाव इफेक्ट आए इसके इसके वजह से ही आज मैं इसको हूँ.
जय हरे कृष्णा. मुझे याद है मैं पहले जगजीत सिंह की गजलें बहुत सुनता था, तो जब मैं अभी मेरे को बताया गया कि अभी यहाँ पर तो सब हरे कृष्णा, तो मुझे मैंने एक ब्रह्मचारी को दिल्ली में कहा कि मेरे को अभी वो जगजीत सिंह की गजलें बहुत अच्छी लगती, तो उसका क्या? बोला नहीं, जगजीत सिंह ने हरे कृष्णा भी गाया. तो मैंने, मेरे लिए वो एक वाव फैक्टर था, तो मैंने सबसे पहले वो जगजीत सिंह की गाई हरे कृष्णा खरीदी और फिर वो जो ट्यून और उसके साथ साथ और भी भजन जो उन्होंने गाए, तो मुझे लगा कि धीरे धीरे कि हर चीज, अगर जो भी आपके पहले की आदतें थी या इंटरेस्ट था, मतलब नॉट सिंफुल, तो उसके लिए भगवान कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट दिए. तो धीरे धीरे फिर वो गजलें सुनना भी बंद हो गया, क्योंकि देखा अरे अभी जगजीत सिंह ने हरे कृष्णा गाया, उनको रोल मॉडल मैं मानता था अपने सिंगिंग का, तो वो अगर हरे कृष्णा गाए तो मैं भी क्यों नहीं हरे कृष्णा गाऊं. अरे एक डिवोटी, आप जो बोल रहे थे ना इंग्लिश बुक्स, तो एक डिवोटी ऐसे बने हैं इस्कॉन में, वो ब्राजील में गए थे बिजनेस करने के लिए, इंडियन, शायद वो राजस्थान मारवाड़ी थे, वो सब जगह रहते हैं ना वो लोग. तो वहां बिजनेस करने, और बिजनेस उनका हो नहीं पा रहा था क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा था, वो स्पैनिश नहीं बोल पा रहे थे, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के वजह से उनका बिजनेस पिकअप नहीं हो रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं लैंग्वेज सीखूंगा, और मैंने देखा है कि मैंने मॉस्को में मारवाड़ियों को देखा है रशियन बोल रहे हैं फ्लुएंटली, मतलब उनका हुनर मानना पड़ेगा कि बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो ये इन्होंने डिसाइड किया कि मैं स्पैनिश सीखूंगा। तो अभी वो अलग अलग वहां पर जाकर बुक्स देखने के लिए, कोई लाइब्रेरी में, कोई बुक स्टॉल पर, यहाँ वहां की कौन सी बुक्स सबसे इजी हो मेरे को स्पैनिश मैं सीख पाऊं। तो उन्होंने देखा अपने इस्कॉन का बुक स्टॉल था, तो उनको पहले समझ में नहीं आया, ब्राजीलियन डिवोटी वहां पर बुक स्टॉल पर थे, तो उनको पहले समझ में नहीं आया कि ये स्पिरिचुअल बुक्स है। तो वो देखने गए कि कोई ऐसी बुक जिसमें मैं स्पैनिश, तो पूछा उन्होंने इंग्लिश में, तो डिवोटी ने गीता दे दी, बोले दिस गीता यू टेक इंग्लिश एंड स्पैनिश एंड यू विल लर्न, इंग्लिश के अंदर देखो और फिर स्पैनिश में देखो तो आपको सीख जाओगे आप स्पैनिश। तो उन्होंने स्पैनिश गीता भी बेच दी और इंग्लिश भी बेच दी, और ये क्योंकि फाइनली अंदर डीएनए तो अपना भारतीय डीएनए है ना, तो भगवत गीता ले ली कि चलो भाई स्पिरिचुअल कुछ पुण्य भी हो जाएगा स्पैनिश सीखते सीखते। और जैसे कि प्रभु जी कहे कि उनका ही ब्रेन वॉश हो गया जब वो किसी का ब्रेन वॉश करने गए थे, तो वैसे ही डिवोटी बन गई स्पैनिश सीखते सीखते, फिर उनको भगवान ने अपना भगत बना लिया, अभी वो इनिशिएटेड डिवोटी है इस्कॉन के। और किसी का वाव फैक्टर? यस प्रभु जी, एक मिनट माइक आ रहा है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम गांव में रहते थे हमारे घर को वारकरी संप्रदाय का स्पर्श था, तो जैसे भगवान के बारे में पता चला तो साल में 15 दिन और 8 दिन ये मौका मिलने का तो मैं सेवा करने के लिए तत्पर था, लेकिन हमेशा ये ख्वाहिश थी कि हमें कि हम किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे और पता चले। जब मैं उन लोगों के माहौल में रहता था कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता था, क्योंकि कथनी एक और होती है और करनी कुछ और होती है। तो ये देखने के बाद मन नहीं करता था कि उन लोगों के साथ रहूं। नासिक में आने के बाद जब मुझे स्कूल में जॉब लगा तो क्लास में मैं संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव महाराज इनकी कहानियां बताने का कहानी बताते वक्त एक स्टूडेंट एक आर्यम और अंतरा शिवरकर, हमारे शिवरकर प्रभु जी, उनके बच्चों जब मेरा क्लास अटेंड करते तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, सर आप एक बार इस्कॉन टेम्पल में आओ। तो मैं पहले दिन आया, आने के बाद क्या हुआ, पहला मेरा ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि कुछ ज्ञान हम अर्जित करते तो हम दूसरों को बहुत कम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है मुझे जो ज्ञान अर्जित हुआ है कोई भी साधु आ जाए मैं उससे परास्त नहीं होऊंगा। पहली बार जब मैंने लेक्चर सुना मेरा ईगो हर्ट हुआ, मैं बोला वाव ये कुछ तो अलग है। दूसरी बात डेडिकेशन, पहली ग्रुप से मैं जब ज्वाइन हुआ था कथनी और करनी में कुछ फर्क था, यहाँ देखा जो बोला जाता है वो किया जाता है, इतना इम्पैक्ट हुआ। मैं कहा भी जाऊं इस्कॉन ये शब्द हरे कृष्णा ये जो शब्द है इतने खून में मिल चुके हैं, चाहे हमारे कभी हमारा स्केड्यूल बिगड़ जाए, चाहे हम किसी वजह से कहीं और चले जाए, पर ये जो इस्कॉन ने दिया है बार बार वाव करने का मन करता है। दूसरी बात हमेशा बार बार आने की कोशिश, लेकिन हॉस्टल में ड्यूटी था तब इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कम रेगुलरली। सो वन डे व्हाट हैपन, आई हैड बीन टोल्ड ऑन दैट डे राधा मदन जी गोपाल का इंस्टॉलेशन था, बहुत दिनों को 2 महीनों के गैप के बाद हमें बुलाया गया, तो कुछ डिवोटीज ने कहा आप सच में लकी हो क्योंकि जिस दिन इनका इंस्टॉलेशन है उसी दिन आपको बुलाया गया है। तो हम कुछ शाम को लेक्चर भी था वो अटेंड किया. बाद में मैंने भगवान के सामने एक रिक्वेस्ट रखी, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ योर डिओटीज प्लीज. तो हमारे स्कूल में क्रिसमस का कभी हॉलीडेज मिलता ही नहीं था, 3 दिन या 4 दिन. तो आत्मतत्व प्रभु जी ने मेरा नाम एनरोल कर दिया और कहा ईश्वर आपको आना ही है. तो प्रभु जी आप बिलीव नहीं करोगे, स्कूल में एक दिन छुट्टी लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं.
एनरोल किसमें किया आपको?
यूथ यात्रा में. उडपी एंड गुरुवायु. और स्कूल में पहली बार हमें क्रिसमस का वेकेशन मिला 24 दिसंबर to 1 जनवरी. जब मैंने आत्मतत्व प्रभु जी को फोन किया, प्रभु जी डेट कौन सी है, तो प्रभु जी ने कहा 24 दिसंबर to 1 जनवरी. तो मैंने कहा वाह, मुझे ये नहीं छोड़ना चाहिए. और प्रभु जी यहाँ आने के बाद जो एक एक लेक्चर सुनते हैं, कुछ पता नहीं आपका लेक्चर हो चाहे कोई भी लेक्चर हो, समझ में नहीं आता. और बहुत ही, मैं तो, मेरी शादी हो चुकी है, अभी 9 महीने हो गए मेरी शादी को, लेकिन मैंने जितना प्यार इस्कॉन और इस्कॉन के डिवोटीज से पाया है आई कांट एक्सप्रेस. बहुत, कोई भी आता है मुंह, हम बोलते हैं ना कितनी मिठास से बात कर रहा है, जो प्यार यहाँ मिलता है वह प्यार कहीं भी नहीं मिलता. और मैं घर में भी बैठा रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ अरे यार हम कुछ अच्छा छोड़ के कहीं और बैठे, तो हमेशा दिमाग में वाव वाव आता है. तो ये वाव हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए.
अरे तो हम भी यही हमारा प्रयास रहेगा कि आपके जीवन में हर दिन भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से वाव फैक्टर बढ़ता रहे. और कब तक बढ़ता रहे? कि जब भगवान के आध्यात्मिक संसार के द्वार खुलेंगे तब फिर वाव निकलेगा कि जो कुछ कहा था वो सच था. और किसी का वाव फैक्टर? यस श्रीपाद प्रभु, आपका जीवन ही वाव है.
हरे कृष्णा प्रभु जी. जब मैं फर्स्ट डे मंदिर में आया था तो मैंने अंदर डीटी के दर्शन नहीं किए थे, बाहर महाराज को देखने के लिए ये ग्राउंड में गया था. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग महाराज मंदिर में मिलेंगे ये सोच के मैं सुबह 5 बजे मंदिर में आया. तो जब मैं काठे गली के सिग्नल से यहाँ आ रहा था तो मुझे धोती कुर्ता में बहुत से डिवोटी भागते हुए दिखाई दे. तो मैं ये सोच रहा था 5 बजे इतने सुबह ये लोग क्यों भाग रहे. और फिर ये सामने वाले बंगले के यहाँ रुका गाड़ी में मेरे, और गेट के अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि सब धोती कुर्ता में थे और मैं शर्ट पैंट में था. तो मुझे लगा कोई यूनिफॉर्म होगा इसलिए. लेकिन एक ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि हर कोई दौड़ रहा था, भाग रहा था मंगल आरती अटेंड करने के लिए, टाइम हो गया था इसलिए आ रहेंगे. लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था. तो फिर हिम्मत करके मैं अंदर आया और मंगल आरती अटेंड करने के बाद जब पा सेशन चालू हो गया तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था. मैं बाहर गार्डन में गया और तब मुझे ये समझ में आया कि ये लोग भाग क्यों रहे थे. तब मेरे मुंह से वाह वाह आया कि अरे बाप रे, ये कलयुग में ये समय में ऐसे लोग हैं जो 5 बजे भगवान के लिए दौड़ते. और फिर मुझे इतना इंस्पायर हुआ उनसे कि मुझे इनके जैसा कुछ करना है भगवान के लिए. ये 5 बजे दौड़ते ऐसा कुछ मुझे भी करना है. तो जब शॉप ओपन हुआ तब अपने कोठावदे प्रभु के पास मैं गया और उनको पूछा कि ये सुबह सब लोग जो बैठे थे वो क्या कर रहे थे. बोले, फिर उन्होंने बताया, महामंत्र बताया, बोले ऐसे 16 राउंड करने पड़ते, वो 16 राउंड हम करते तो आप भी कर सकते. तो मैंने उनको बोला कि जप माला दे दो आप मुझे, मैं भी करूँगा. फिर वो उन्होंने मुझे जप माला दी, वो खुद जाके पुजारी को देके ऑफर करके लेके आए मेरे लिए. और तब मुझे 3 घंटा लगा उसी दिन 16 राउंड करने के लिए.
पहले दिन 16 माला?
हाँ. तो
ये हमारे लिए वाव है.
लेकिन वो 16 राउंड क्यों हुए, क्योंकि मुझे वो खारी हो गई थी उनसे ऐसे कि ये लोग सुबह 5 बजे भगवान के लिए कुछ कर सकते तो मैं भी कुछ करूँगा. तो मैं 3 घंटे जपा करूंगा वो
चैलेंज. वाह, जय हो, हरि बोल. यस प्रशांत, प्रशांत गोड़ से मेरे बहुत पुराने मित्र हैं. मैं जब बंबई में UICT, अभी जिसको ICT बोलते हैं, पहले UDCT बोलते थे, तो वहाँ पर जब मैं प्रीचिंग करता था तो इनिशियल डेज में जो लोग सीरियस हुए आना, तो उसमें से प्रशांत, इनका नाम प्रशांत गोडसे है, इन्होंने वहाँ से PhD किया आपने?
M.Tech.
और अभी कहाँ, हैदराबाद में है? तो यहाँ पर नासिक में आपके भाई रहते हैं ना?
हाँ.
भाई रहते हैं, तो ये बहुत सालों बाद मुझसे मिले हैं. कितने सालों बाद?
8 years.
8 साल बाद मिले हैं. तो मैंने कहा कि ठीक है, आज प्रोग्राम है, आप आ जाइए. तो आइए हम प्रशांत गोडसे प्रभु का स्वागत करें,
और
हरिप्रिया माता जी का भी स्वागत करें 3 बार.
So at this moment, this is the wow factor for me, that you know, hearing from Shikshashtam Prabhu after 8 years. So that I'm seeing as a coincidence for me. And to start with, I was in my hostel room doing some of the assignment work, where Madhvendra Puri Prabhu, who used to accompany Shikshashtam Prabhu, they just knocked the door, and I just saw a saffron brahmachari in front of me, and he just kept a peda. It was called, I just forgot.
Sukdi.
In my hand, and we ate that. And when, the first time when we went inside that room to attend the lecture, the first wow factor for in my Krishna conscious career was the attractive form of Shikshashtakam Prabhu. He was like so beautiful and so attractive. So that was... so, and the second wow factor was his kirtan. जय राधा माधव.
ऐसे आप बोलेंगे तो फिर 8 साल बाद मिलेंगे हम.
The second wow factor was his kirtan, जय राधा माधव. No background of nothing, you know, first time hearing जय राधा माधव from his such a melodious, just touching the heart. No background about what is Krishna consciousness, nothing, but that was the natural wow factor coming from the heart. And the very vital point which brought me and kept me consistent in Krishna consciousness, which could I say that second time which I came to Krishna consciousness, was the taste of the khichdi.
Arivo.
Frankly telling. So we used to love.
अच्छा यहाँ पर कौन कौन है खिचड़ी के प्रेमी?
So believe me, you know, in fact, we used to lock our laboratory in such a anxiety that as if a boy is has to go and want to see and meet his girlfriend. Like that, that kind of attractiveness is to be there, that when we'll go to the lecture, and when the lecture will end, and when we'll taste the khichdi. So that was the third wow factor. Thanks, Prabhu. And after hearing, you know, that how these brahmacharis are coming inside the institute and giving lectures on personality development, so these slides are not new. These kind of posters, Shikshashtam Prabhu is very, very keen in having the posters on personality development, specially designed. Big, big posters on each, on the entire campus, on the walls were pasted. And I would say it was excelling the power of mind, some kind of such type of headlines, which is one of the wow factor in entire campus. Everyone viewing the posters, oh, who, like, you know, what are attractive posters. And I would say, then after some time, we were told that Shikshashtam Prabhu and group were interviewed by our institute professors. For nearly half an hour, I don't know how what was the time.
Gaikar.
Yeah. And he was a professor who was one of the saddest professors in our campus, which is very difficult to convince. And even we used to get frightened and fearful after looking at him. And he has had a conversation with Shikshashtam Prabhu, and he got, maybe his heart got melted, you could say. That was
Gaikar, ek ye jo bata rahe hai na, wo UDCT college mein bahut hi वो स्ट्रिक्ट क्या थे, व्हाट पोस्ट ही वाज ऑन?
ही वाज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग.
या तो HOD वगैरह वो कुछ पोस्ट, बड़े पोस्ट पे थे. तो UDCT कैंपस के अंदर मैं आपको बताता हूँ हमारी एंट्री कैसे हुई थी. तो मुझे उस समय तो राधानाथ महाराज का पर्सनल सर्वेंट था, तो मुझे गौरांग प्रभु ने कहा था कि तुमको कॉलेज प्रीचिंग चालू करना है, तुम एक प्रोग्राम तो चालू करो कॉलेज का. तो उन्होंने कहा कि UDCT एक बहुत बड़ा कॉलेज है वडाला में, तो वहां पर अभी तक हम लोग गए नहीं है अंदर। तो पहले तो मैंने मैप पे ढूंढा ये कॉलेज है किधर, वो कैसे पहुंचते हैं इधर। तो इतना बड़ा गेट उसका, तो मैंने कहा कि मेन गेट में अगर मैं एंट्री करूंगा तो मेरे को शायद रोक लेंगे लोग। तो फिर मैंने पूछा कि इसका कोई पिछला पीछा वाला कोई गेट है क्या। तो वहां पे स्टूडेंट्स बाहर थे, बस स्टॉप था वहां पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक पीछे का भी गेट है। तो मैं पीछे के गेट पे गया तो वहां पर भी सिक्योरिटी था। मुझे लगा वहां पे सिक्योरिटी नहीं होगा, वहां पर भी सिक्योरिटी था। तो सिक्योरिटी ने पूछा हाँ महाराज किधर। तभी कई कई बार क्या होता है कि हमने बॉम्बे में सीखा था कि यदि आपको फर्स्ट टाइम कॉलेज प्रमाइसिस में एंट्री करना है तो आपको कॉन्फिडेंट होना है बस। तो मैंने सिक्योरिटी को बोला कि हमारा प्रोग्राम है आज यहाँ पे, मतलब कोई पब्लिसिटी कुछ नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम वो कॉलेज में एंट्री कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम? बोला इस्कॉन का प्रोग्राम, इस्कॉन का मंदिर आप जानते नहीं जूह में, तो हमारा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए आज। तो मैं खिचड़ी लेके गया था, तो मैं उसको भी सुकड़ी दी मैंने, मतलब कि अरे हमारा प्रोग्राम है रूम नंबर 13 में, और रूम नंबर 13 मुझे पता नहीं है कि नहीं हॉस्टल में। तो उसने कॉन्फिडेंस देख के अलाउ कर दिया, बोला ठीक है ठीक है। तो अभी मैं देखा रूम नंबर 13 है क्या। तो उधर हॉस्टल में एंट्री करने के बाद में सबसे पहले देखा कि एक रीडिंग रूम था, ओल्ड हॉस्टल रीडिंग रूम था। तो रीडिंग रूम के अंदर मैं गया, कोई पेपर पढ़ रहा था, कोई मैगजीन पढ़ रहा था। फिर जो पहला कमरा था, पहले कमरे में एंट्री किया मैंने, और फिर उनको अनाउंस किया आई एम कम फ्रॉम इस्कॉन एंड आई विल बी टीचिंग यू सम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स एंड हाउ टू स्टडी वेल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। सो आई हैव बीन अपॉइंटेड ओवर हियर टू गिव यू सच टिप्स एंड आई माई सेल्फ, खुद का इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया। कुछ 10-15 बच्चे वहाँ बैठे थे। So I'll be waiting in the reading room for all of you. तो fortunately वो सारे के सारे आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ तो बाल्टी में महकदार चीज लेकर आए और वो बाल्टी में थोड़ा सा खुला करके लाया था, तो गरम गरम खिचड़ी अभी 6 बजे बनी हुई, मैं वहां पे पहुंचा था 7 बजे, तो गरम गरम खिचड़ी की महक, तो सबके सब आ गए। और जैसे इन्होंने कहा, और उसके बाद में वहां का जो प्रोग्राम्स रूम्स में शुरू किया, फिर एक वहां पर वो सीरियस हुए थोड़ा, 2 माला शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि मेरे रूम में आप प्रोग्राम शुरू कीजिए। तो फिर कम से कम एक बोनाफाइड रूम नंबर मिल गया मेरे को, अभी कहां प्रोग्राम करूंगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि लेक्चर के समय कुछ 10-15 स्टूडेंट्स हुआ करते थे उस कमरे में, और जैसे ही फिर मैंने कीर्तन शुरू किया, कीर्तन खत्म होने के बाद जब मैं आंख खोलता था तो 50 बच्चे आप समझ जाइए। और उस समय तो सेलफोन्स नहीं थे, मैं आपको बात बता रहा हूं 15 साल पहले की, सेलफोन्स नहीं थे। तो अंदर जो बैठे हैं बच्चे वो लोग चिट्स बाहर सप्लाई करते थे, बाल्टी दिख रही है, बाल्टी है आ जा। तो मुझे बाद में बताया गया कि ऐसे ऐसे चिट्स बाहर पूरे वो रो में, वो ओल्ड हॉस्टल के पूरे रूम्स में वो सप्लाई होते थे, और वो लोग फिर वो खिचड़ी खाने के लिए आते थे। और स्पेशली यूडी सिटी की खिचड़ी, उसको अलग से स्पेशल ऑल सब्जियों का तड़का मार के बना के लेके आता था। तो ये जो प्रोफेसर गायकर की बात बोल रहे हैं, ये जो हम लोग जिसको कह सकते हैं खड़ूस, उस प्रकार का ये व्यक्ति था। तो जब मैं मिलने गया तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे आपके स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार्स शुरू करना चाहता हूं। पूरे साल भर का कोर्स मैंने दे दिया, पूरा बना के लाया था मैं। साल भर के कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे उनको, स्टूडेंट स्किल्स क्या क्या सिखाएंगे साल भर का कोर्स। तो पूरा उसका ब्रोशर बनाया था मैंने, बाकायदा प्रिंटेड प्रिंट ब्रोशर कलर्ड प्रिंटेड ब्रोशर उसको दिया और फिर उसने वो देखा तो उसने जो मेन उनका एक रेक रूम है, मतलब ऑलमोस्ट इतना बड़ा वो रेक रूम, वो उसने रिलीज किया और मैं उसको हमारे मंदिर का मेन संदेश प्रसाद देने गया, बोला ये सब पे मैं विश्वास नहीं करता, भगवान पे विश्वास नहीं करता, ये सब प्रसाद वगैरह ले जाओ, आप स्टूडेंट स्किल सिखा रहे हो वो आप शुरू करो, ये जो बच्चे हैं इनको थोड़ा सही राह पर ले जाओ। वो बोल रहा है ये बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, ये पूरे एशिया का बेस्ट केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ से ग्रेजुएट होके सब अमेरिका चले जाते हैं, इनको सिखाओ कि भारत की सेवा करें। वो थोड़ा नेशनलिस्टिक स्पिरिट वाला बंदा था, बोला भारत की सेवा करे, ये सब सिखाओ उनको, जैसे आप कर रहे हैं भारत की सेवा वैसे, ये भगवान भगवान का प्रसाद वसाद मत दो मुझे, ये सिखाओ इनको। एकदम वो जोरदार आवाज में बोलना शुरू किया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मैंने वो सब सीरीज चालू किए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये वो माइंड कंट्रोल, ये सब पोस्टर लगा लगा के। तो क्योंकि इतना बड़ा रेक रूम उसने दिया था, अब हुआ क्या क्या, एक साल तक मैंने ये सब सारे सेमिनार्स लिए और फिर मैंने कहा अब गीता चालू करते हैं, क्योंकि एक साल बाद वो अभी इतना क्राउड आने लग गया, 100-100 स्टूडेंट्स आने लगे, तो फिर गीता चालू किया। फिर मालचे, यू नो मालचे, तो फिर एक वहां पर ही हॉस्टल में ही, स्टूडेंट्स के हॉस्टल के ऊपर टॉप फ्लोर पर एक प्रोफेसर रहते थे, प्रोफेसर मालचे। तो गायकर ने 1.5 साल बाद प्रोफेसर मालचे को बोला कि जाकर वो चेक करो, मैंने उनको रेक रूम दिया था हर गुरुवार को यूज करने के लिए, तो वो लोग वो कोर्सेज ले रहे हैं क्या अभी भी इस्कॉन वाले, और मैंने गीता चालू कर दिया था ऑलरेडी। तो जिस हफ्ते गायकर ने मालचे को भेजा, प्रोफेसर मालचे को भेजा, उस हफ्ते मैं महाराज की सेवा में बिजी था, मैं जा नहीं पाया प्रोग्राम पे। तो मैंने बलदेव प्रभु हमारे ब्रह्मचारी उनको भेजा, तो लास्ट मिनट पे उनको मैंने बोला था कि आप जाके थोड़ा आज का लेक्चर दे दो, तो क्योंकि लास्ट मिनट में बोला था तो प्रीचर के पास जो प्रिपेयर्ड लेक्चर होता है वही वो रिपीट कर देते, तो उनके पास सीक्रेट ऑफ सक्सेस का प्रिपेयर्ड लेक्चर पावर पॉइंट का प्रेजेंट थे। तो उन्होंने वो दे दिया। वो देने के बाद वो प्रोफेसर मालचे वो गायकर को जाके रिपोर्ट किया, अरे उन्होंने क्या उनका प्रेजेंटेशन हो रहा है वहां पे पावर पॉइंट के ऊपर सीक्रेट ऑफ सक्सेस स्टूडेंट्स के लिए, तो हमको उसको प्रिंट आउट निकाल के नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए, ऐसे लेक्चर्स हो रहे हैं उनके। तो गायकर बोला हाँ। तो फिर उसने वो और 1.5 साल का साइन करके दे दिया कि आप उसको और आगे 1.5 साल तक यूज कर सकते। तो ये सब भी वाव फैक्टर्स कि मेरे को अभी याद आया जब ये उनकी बात निकाला गायकर की। और यहाँ पर एक है, इनकी ऐसी ऐसी स्टोरीज है वो कभी मैं बताऊंगा आपको, ये या अपने आप में एक वाव डिवोटी है। थैंक यू। तो बेसिकली मैं ये स्लाइड से एंड करूंगा, और भी मेरे को दिखाने थे आज के स्लाइड, ये पर्टिकुलर इमेज मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि इसके एक्सप्रेशन से आप समझ जाओ कि ये बोल नहीं पा रहा है लेकिन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वाह। और ये पपी जो एक पानी के बुलबुले को देखकर वाव बोल सकता है। तो अगली बार हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमको ये नहीं देखना है कि क्या मेरे को बहुत बड़ा कोई साक्षात्कार हुआ तब जाकर वाव निकला। जैसे वृंदावन प्रसाद प्रभु शेयर किए कि फोन पर हरे कृष्णा बोलना, केवल इतनी सी बात से उनके अंदर से वाव निकला। तो मैं ये चाहूंगा कि अगली बार हम छोटी सी छोटी चीज जो हमारे जीवन में अगर हुई है उसको भी शेयर करें, क्योंकि कई बार कोई सबसे छोटी सी चीज किसी दूसरे के लिए वो छोटी होगी, परंतु जो इंडिविजुअल के जीवन में परिवर्तन वो छोटी सी चीज लाई, वो आज जब पीछे मुड़कर देखता है उसके विषय में सोचता है, तो उस समय हो सकता है उसने वाव नहीं बोला होगा, आज वो वाव बोलेगा कि उसके वजह से जो भी मैं आज हूं, जिस मुकाम तक पहुंचा हूं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उस छोटी सी चीज के वजह से कि किसी ने मेरे को, मैं खाली एक लास्ट इंसिडेंट से एंड करूंगा कि बॉम्बे में एक डिवोटी हमारे आईवाइस ग्रुप में, वो डिवोटी 16 माला करना कैसे उन्होंने शुरू किया, तो कॉलेज कैंटीन, वो जिस कॉलेज में थे, तो एक टिपिकल कॉलेज कैंटीन का सीन कि टेबल पे बैठे स्टूडेंट्स, यहां वहां की बातें, किसी की खिल्ली उड़ाना, जैसे करते ना कॉलेज कैंटीन के अंदर। तो ये एक अपने टेबल पर बैठा हुआ जो भी कुछ खा पी रहा था, तो दूसरे टेबल पर बहुत सारे ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स जो इस्कॉन के प्रेरणा प्रोग्राम की खिल्ली उड़ा रहे थे, और वहां पर प्रेरणा के पासेज उस कॉलेज में बांटे हुए थे। तो ये लोग बोले, ए आजकल ये हरे कृष्ण वाले देखो क्या चालू किए, प्रेरणा प्रेरणा करके पासेज वगैरह बनाए, कलर पासेज, फ्री एंट्री, ये वो प्रसाद, डिनर प्रसाद लिखा है इसमें, टॉपिक भी एकदम ऐसा लिखा है कि धांसू धांसू टॉपिक है। तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, और मजाक उड़ाते उड़ाते थे उनके पास जो पासेज थे उन्होंने जाते जाते ऐसे फेंक के चले गए, और वो चले गए, और ये उसने वो पास उठाया, और वो पास पे लिखा हुआ था फ्री एंट्री। तो पास लेके वो मंदिर आए, आज वो इनिशिएटेड डिवोटी है। किसी दूसरे का फेंका हुआ प्रेरणा का फ्री एंट्री पास ने इसको भक्त बना दिया। तो ये डिवोटी मेरे को बता रहे थे कि छोटी छोटी सी चीजें हमारे जीवन में हमको कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो बोल रहा था कि अगर वो लोग प्रेरणा आ जाते, हो सकता था कि मैं, पता नहीं भगवान का क्या अरेंजमेंट था कि मैं उस समय नहीं आता या कब आता पता नहीं, लेकिन उनके वो पास फेंकने की वजह से मैं आज यहां पर। तो हम अगली बार इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा अगला सेशन कब है? 10th में मेरे ख्याल से, 10th में सैटरडे, आई थिंक सो। नहीं सैटरडे है ना, सैटरडे है ना 10th। तो हाँ, हमारा अगला अभी सेशन एकादशी के दिन, बहुत अच्छा दिन है, तो उस दिन होगा, और उसमें फिर हम इसी वाव फैक्टर को और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको 15 दिन मिल रहे हैं, आपके जितने वाव फैक्टर्स आप लिख कर लाओ, शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके वाव फैक्टर से किसी का वाव फैक्टर अभी शुरू हो सकता है। बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ वाव फैक्टर माइट बिगिन समवन्स वाव फैक्टर नाउ एट दिस पॉइंट, सो डोंट हेजिटेट टू शेयर। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, जिन्होंने